الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اس وقت کچھ تذکرہ ہوتا ہے پرانے حال احوال کا، نئے ساتھی آتے ہیں ان کو پرانے ساتھی کچھ اپنے حال احوال سناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کرم فرمایا، اس رستے میں آنے کی توفیق بخشی اور حالات کس طرح پلٹے. آج ایک ساتھی میرے پاس ایک رسالہ لے کے آئے، کتابچہ تھا، تو اس نے لکھا تھا کہ ایک کرامت کا تذکرہ. تو وہ ان حالات سے ہٹ کے کرامت کیا ہونی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، فضل ہے، کرم ہے، جس پہ کر دے، جس وقت چاہے کر دے، کسی کی اختیاری چیز نہیں ہوتی. صرف آپ ان کو دیکھ لو، ان کی زبان سے تھوڑے سے حال سن لو. اس سے پہلے کہ میں کسی ساتھی کو بلاؤں جو ہمارے استادوں کی حال احوال سن رہا ہے، مقصود ہی آ جاؤ. بھاری بھرکم ساتھی ہیں، مقصود صاحب ہیں، اور ان کے واقعہ زبان سن لے گا. بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ماشاء اللہ یہاں بیٹھے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پچھلے سال کی بات ہے، لنگر مخدوم اجتماع کے بعد کوئٹہ کی جماعت بھی ساتھ تھی، تو پروگرام یہ بنایا تھا کہ کوئٹہ والوں کا چونکہ سفر کافی لمبا ہوتا ہے، تو ایک رات کنکوٹ میں ٹھہرا کے ان کو آگے روانہ کریں گے. کنکوٹ سندھ، یہ پنجاب اور سندھ کا بارڈر، بلکہ بلوچستان، تینوں صوبوں کا بارڈر ہے. تو راستے میں کافی دیر ہو گئی، اس وجہ سے رات بھر تو قیام نہیں ہو سکا. فجر کے وقت تقریباً سحری کے وقت وہاں پہنچے کنکوٹ میں. ساتھیوں سے میں نے کہا کہ اب آرام کر کے اگلی صبح جائیں، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ چلے جائیں گے. تو اس کے بعد کچھ دن میری چھٹی کے باقی تھے، میں نے دفتر جوائن کیا. وہاں میرا گاؤں کے قریب ہی جو ہے دفتر ہے، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، پی پی ایل، جہاں سے سوئی گیس نکلتی ہے. ایک تو سوئی سے نکلتی ہے، ایک کندکوٹ میں بھی گیس کا پلانٹ ہے، وہاں سے بھی نکلتی ہے.
گیس کے بڑے افسر ہیں، اس لحاظ سے گیس بند.
تو 29 اکتوبر کو جمعۃ المبارک کا دن تھا، فجر کی نماز کے لیے میں وہاں جو ہمارا کیمپ تھا وہاں سے مسجد میں جا رہا تھا فجر کی نماز کے لیے. تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری ٹانگیں جس طرح روزانہ میں چلتا ہوں اس طرح نہیں ہیں، کافی دقت پیش آ رہی ہے چلنے میں. بہرحال وہ میں نے اندازہ یہ لگایا کہ شاید رات کو میں نے زیادہ دیر تک کام کیا تھا دفتر میں، تو اس وجہ سے شاید ٹانگیں بوجھل بوجھل سی ہیں. پھر اس کے بعد جب جمعے کی نماز کے لیے میں وہاں جانے لگا تو پھر یہی حالت، بلکہ پہلے سے اور زیادہ کمزوری. جمعے کی نماز کی سنت جب میں نے شروع کی تو اس میں بہت زیادہ محنت کرنا پڑ رہی تھی، وہ میں نے پوری کی. پھر جمعے کا فرض جو ہے وہ جماعت سے پڑھنے کے بعد پھر میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں جو ہے باقی نماز جس طرح پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے، اس طرح وہ میں نے بیٹھ کے پڑھی اور واپس وہاں اپنے کمرے میں چلا گیا. اس کے بعد کی نمازیں جو ہیں وہ اپنا کمرے میں ہی پڑھتا رہا، مسجد جانے کی ہمت تک نہیں ہوئی. دفتر جو ہے صرف چند قدم کے فاصلے پہ تھا، تو وہاں میں اگلی صبح جب دفتر گیا تو قدم جب اس پہ جس طرح یہ اسٹیپ بنے ہوئے ہیں، دو تین اسٹیپ تھے، رکھنے لگا تو وہ بڑا دشواری سے جو ہے وہ رکھنے لگے. تو میں نے اگلے دن جو ہے ڈاکٹر کو دکھایا، وہاں کمپنی کا ڈاکٹر تھا کنکوٹ شہر میں، اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا آپ کا وزن بڑا ہوا ہے اس وجہ سے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ سمجھے ہی نہیں کچھ بھی، میرا وزن تو آج کا نہیں ہے، میں تو بچپن سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم اوور ویٹ ہو، اور بچپن سے لے کر وزن بڑا ہوا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی رہا. یہ جو ایک دو دن سے میری حالت ہو رہی ہے یہ کوئی اور معاملہ ہے. لیکن اس غریب کو سمجھ میں نہیں آیا. یہ اب تقریباً 31 اکتوبر ہو چکی تھی. اس دن تو پھر اسٹیپ चढ़ते वक्त मुमकिन ही नहीं था। कोई आदमी जब मुझे पकड़ के वहाँ कदम रखे तो हो सकता था, वरना नहीं हो सकता था। फिर मैंने वहाँ हमारे कैंप के जो इंचार्ज थे ऑफिसर, उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी हालत ही है और दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, तो मैं इलाज के लिए कराची जाना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, आप चले जाएं। उसने तआवुन किया, उसने कहा कि मैं वहाँ कराची में मेडिकल डिपार्टमेंट को भी आगाह कर देता हूँ, वो आपके इलाज का बंदोबस्त कर देंगे। अब यहाँ तक मेरी हालत जो ये हो गई थी कि मैं इस्तंजा के लिए वहाँ बैठता तो उठना मेरे बस में नहीं था। वो मैंने एक बाल्टी को उल्टा करके उधर पड़ी हुई थी बाथरूम में, हाथों का जोर लगा के मजबूरी से जो है वो उठ के खड़ा हुआ, वरना ये भी चीज़ मेरे बस में नहीं रही। तो पहली तारीख की तो बुकिंग नहीं मिली जैसे उन्होंने कहा था। 2 नवंबर को जो है सखर से कराची के लिए बुकिंग मिल गई मुझे। तो वो चूंकि वो छोटा जहाज़ जो होता है ATR, उसमें व्हील चेयर ऊपर चढ़ाने का कोई बंदोबस्त नहीं होता, तो वहाँ मुझे पहुँचाने के लिए उन्होंने इस तरह से किया कि जो रेलिंग है उसकी सीढ़ियों की, उसको मैं मजबूती से पकड़ता था। एक आदमी मेरा कदम उठा के एक सीढ़ी पे रखता, फिर दूसरा कदम रखता, इस तरह मैं वहाँ पहुँचा। कराची एयरपोर्ट पे वो कंपनी वाले जो है एम्बुलेंस लेके खड़े हुए थे, और उन्होंने वहाँ पे लियाकत नेशनल अस्पताल में पहुँचा दिया, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। वहाँ डॉक्टर सैयद अहमद आसिफ साहब थे, उन्होंने जो है मेरा मुआयना किया। कंपनी का जो डॉक्टर साथ था उसने उनसे पूछा कि आप क्या समझते हैं कि क्या हो गया है इसको। तो उस डॉक्टर ने जवाब दिया कि ये जीबी सिंड्रोम, ये पता नहीं क्या कोई बीमारी है जीबी सिंड्रोम के नाम से, कि वो लग रही है मुझे, मैं और कुछ टेस्ट करूंगा जिससे सबूत मिलेगा कि ये वाकई वो है या कोई और चीज़ है। फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह किए जिससे सबूत मिला कि जीबी सिंड्रोम ही है। वहाँ मेरे साथ जो आए हुए थे तीमारदार, उनमें से किसी ने पूछा कि ये क्या होता है जीबी सिंड्रोम में, तो मुख्तसर सा जवाब दिया कि वायरस जो है खून में शामिल होके नर्वस सिस्टम को ख़त्म कर देता है और तबाह कर देता है, नर्वस सिस्टम जो है वो काम करने के काबिल नहीं होता। बहरहाल वहाँ मुझे दाखिल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके 2 तरीके हैं इलाज के, एक तो ये है कि वायरस जो है वो खून के प्लाज्मा में शामिल हैं, वो प्लाज्मा निकाल के हम दूसरा प्लाज्मा डालेंगे, और दूसरा तरीका ये है कि इंजेक्शन लगते हैं अमाइनो इंजेक्ट ग्लोबिन के, वो लगाते हैं, लेकिन मैं पहला तरीका ही अख्तियार करूंगा। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। तो प्लाज्मा फेरेसिस में ये होता था कि यहाँ पे उन्होंने बड़ी एक जो है ना 2 शाखों वाली ट्यूब डाल दी थी जो कि अंदर काफ़ी गहराई तक जो है पहुँची हुई थी। एक के ज़रिए वो खून निकलता था, मशीन में जाता था, उसमें प्लाज्मा वो निकाल के दूसरा प्लाज्मा डालते थे, फिर दूसरी नाली के ज़रिए अंदर जाता था। उन्होंने कहा कि ये टोटल 5 इसके प्रोसेस होंगे, और आमतौर पर 3 प्रोसेस में लोग चलना शुरू करते हैं। तो तीसरे प्रोसेस पर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि रोज़ से रोज़ हालत ख़राब हुई। मैं खड़े होने के भी काबिल नहीं रहा था, खड़ा होना भी मेरे बस में नहीं था। नमाज भी मैं इस तरह पढ़ता था कि पानी का टब जो है वो बिस्तर पे ही मंगवाता था और उससे वजू करके बिस्तर को ही किबला रुख करके नमाज पढ़ता था। ये हालत थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वहाँ से मैंने तकरीबन 15 दिन गुजर गए थे वहाँ अस्पताल में। मुझे मैंने सोचा कि अब इस इलाज का मैं क्या करूं जिसका कोई अब तक फ़ायदा नज़र ही नहीं आ रहा कि कुछ हो। उन्होंने कहा था कि 3 के बाद लोग चलना शुरू करते हैं, 3 के बाद चौथा भी हुआ कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैं दरख्वास्त अपने हजरत जी की खिदमत में पेश करूं, तो मैंने फ़ोन मिलाया। अब हजरत जी ने फ़ोन उठाया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, अल्फाज मुंह से अदा ही नहीं हो रहे। मैं रोता रहा, रोता ही रहा, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कुछ कहा हो, रोता ही रहा, धाड़ी मार के जिस तरह लोग रोते हैं ना, इस तरह रोता रहा कि ये मेरी हालत। बहरहाल वो तो फोन बंद मुकम्मल होने के बाद बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद हजरत जी ने खुद फोन किया मुझे। हजरत जी कहने लगे, मकसूद जी मैं अपनी दवाई भेजूं। मैंने कहा हजरत मुझे और क्या चाहिए, आपकी दवा भी हो, आपकी दुआ भी हो तो अल्लाह ताला करम फरमाएगा। वो आगे का मामला है ना अमाइनोग्लोबिन इंजेक्शन में। नहीं, वो ये लियाकत नेशनल का इलाज पूरा होने के बाद फिर जब आगा खान में दाखिल किया उन्होंने, वो वहाँ की बात। तो यहाँ 5 सेशन के बाद भी मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हल्का सा इस तरह कोई मामूली सा महसूस हुआ कि कुछ जो है फायदा हुआ है। तो वो मैंने ना पिछले साल यहाँ मुर्शिदाबाद में मिन्हाज साहब की तकरीर सुनी थी, और वो उन्होंने जो है वो स्टैटिक एनर्जी क्या कहा था या कुछ, वो मैंने कहा कि ये मेरी दवा शायद हजरत जी वाली कराची पहुँच गई है। अब वो उसके असरात से मैं अभी खाई ही नहीं थी, मुझ तक पहुँची ही नहीं थी दवा, तो मैंने कहा शायद उसके असरात की वजह से जो है कुछ तबीयत में
ये
बेहतरी
तो
आई।
यूसुफ कुरान में कहता है, ये तो
तो उसके बाद जो है
वाह।
मुझे वहाँ पे इतना शदीद बुखार हुआ कि उन्होंने जो है वो प्लाज्मा फ्रेसिस के जो बाकी बकाया थे वो रोक दिए कि बुखार में नहीं करते। तकरीबन 105 डिग्री बुखार था और 24 घंटे में सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए कम होके 103 तक आता था। ये 1 हफ्ते तक बुखार रहा, तो वो जो थोड़ा सा फ़ायदा नज़र आया था वो भी ख़त्म हो गया। तो वहाँ फिर उन्होंने कहा कि अस्पताल वालों ने कि जी आपका इलाज मुकम्मल हो गया, आप चले जाएं। मैंने कहा इलाज मुकम्मल हो गया है, मैं चला जाता हूँ, मुझे फ़ायदा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, बस आपका इलाज ये प्लाज्मा फ्रोसिस हमने कर लिया है। मैंने कहा कि दूसरा जो आपने बताया था अमाइनोग्लोबिन, उन्होंने कहा वो अब आपको फ़ायदा नहीं देगा, तो हम जो है ना आपका इलाज आपको डिस्चार्ज कर देते हैं, आप घर चले जाएँ। मैंने कंपनी के मेडिकल डिपार्टमेंट को बता दिया, उन्होंने कहा कि ये अगर डिस्चार्ज कर रहे हैं आपको तो हम आगा खान अस्पताल में आपको दाखिल करा देते हैं, हो सकता है वहाँ उनको कोई समझ में आ जाए बात। तो ये कोई शाम का टाइम था और उन्होंने लेटर दिया मुझे वहाँ एडमिट होने के लिए, वो मैंने भिजवा दिया। तो उन्होंने कहा कि हम केस उस वक्त लेंगे जब चूंकि आपका प्लाज्मा फ्रेसिस हो चुका है, अब अमाइनोग्लोबिन इंजेक्शन लगेंगे आपको और वो इंजेक्शन बड़े महंगे हैं, 20 लाख रुपए फौरी तौर पे आप जमा कराएं तो फिर हम आपका केस लेंगे, वरना केस नहीं लेंगे। मैंने इस सूरत हाल से फिर वहाँ कंपनी के मेडिकल डिपार्टमेंट को बता दिया। तो कंपनी के मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने जो है लिख के दे दिया पर्चे पे कि अब चूंकि शाम हो चुकी है, बैंक बंद है, इसलिए कल हम सुबह को ये रकम आगा खान अस्पताल के अकाउंट में जमा करा देंगे। इस यकीन दहानी पर उन्होंने केस लिया और वहाँ पे डॉक्टर साहब आए जिन्होंने मेरा इलाज करना था, डॉक्टर फारूक शहाब साहब, वो भी न्यूरोलॉजी के। तो उन्होंने कहा कि हम आपको कल से अमाइनोग्लोबिन इंजेक्शन जो है ना वो शुरू कर देंगे। अगली सुबह उन्होंने एक पूरा बॉक्स भर के इंजेक्शंस का वहाँ पे रख दिया। मेरा अंदाज़ा था कि ये शायद जो है पूरे जितने दिन लगेंगे वो पूरा है उसका। उन्होंने कहा नहीं, ये तो आपको एक दिन में लगेंगे सिर्फ। 21 जो है इतने बड़े बड़े बॉटल थे, 50 मिलीलीटर का एक बॉटल, 21 बॉटल थे और एक बॉटल के ख़त्म होने में तकरीबन आधा घंटा लगता था। तो 21 के ख़त्म होने में 10.5-11 घंटे, लेकिन इससे लगता ज़्यादा था क्योंकि रोकना पड़ता था बीच में इस्तंजा के लिए, नमाज के वक्त के लिए, खाना खाने के लिए, तो वो रोक देते थे। इसलिए मेरे तकरीबन 15-16 घंटे रोज़ाना इसमें लगते थे। उन्होंने कहा कि ये रोज़ाना हम आपको लगाएंगे और 5 दिन लगाएंगे। तो तकरीबन 15-16 घंटे इसमें लगते थे, वो ड्रिप की तरह जो है लटका के, एक ख़त्म होती बॉटल फिर दूसरी फिर तीसरी, लेकिन उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये जब 5 दिन पूरे हो गए तो बस इतना था कि अब वाकर पे चंद कदम जो है मैं लेने के काबिल हुआ ज़रा सा। वो भी मेरा अंदाज़ ये है कि हजरत जी की दवा आ गई थी मेरे पास, उसको लेते हुए तकरीबन 15 दिन हो गए थे, तो वो उस दवा का असर था। अस्पताल वाले खुश कि हमारी दवा से फ़र्क पड़ा है, तो उन्होंने 5वें दिन मुझे फिर डिस्चार्ज स्लिप बना के दे दिया कि जी आप चले जाएं। मैंने कहा फ़ायदा तो ज़रा सा हुआ है, कोई ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं। उन्होंने कहा नहीं, अब अगर मज़ीद कोई फ़ायदा होगा कई साल लगेंगे इसमें, और आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा हो सकता है हो, आपको ये भी हो सकता है कि ना हो। ये उस दिन गालिबन ये फिर नवंबर की 28 या 29 तारीख थी। कराची के साथी हैं आशिक हुसैन साहब, उनके बेटे की दावत वलीमा थी उस दिन, उन्होंने कहा कि आपने आना है वहाँ। मैंने कहा मैं तो हालत ये है कि मैं कैसे आऊँगा वहाँ। उन्होंने कहा अगर आप नहीं आ सकें तो कम से कम अहलिया को भेज दें। मैंने उसको कहा कि चली जाएं, लेकिन उसने कहा कि मैं तो इस हालत में आपको छोड़ के नहीं जा सकती। फिर मैं हिम्मत पकड़ ली और गाड़ी में बैठ के वहाँ शादी हाल तक पहुँचा, और खाना खाने के बाद जब वापस जाने लगे तो बिल्कुल मेरी हालत ऐसी हो गई कि सर चकराने लगा और ऐसा लगा कि वाकर समेत मैं गिर जाऊंगा। और वो सीढ़ियों एक दो स्टेप ऐसे बने हुए थे वहाँ, उनसे उतरने के लिए ना फिर मेरी ये हालत हुई कि मैं बिल्कुल तकरीबन बेहोश होने लगा था। वहाँ उन्होंने कुर्सी दी मुझे कि आप बैठ जाएं, सुकून हो कुछ, तो कुछ देर मैंने आराम किया वहाँ। तो जब चक्कर ख़त्म हुए फिर उन्होंने कुर्सी समेत, दो आदमियों ने इधर कुर्सी से पकड़ा, दो आदमियों ने इधर कुर्सी से पकड़ा, कुर्सी समेत गाड़ी तक ले गए। गाड़ी में इस तरह बैठ के मैं फिर घर चला गया। ये गालिबन आखिरी तारीख थी, मतलब 29 थी या 28 थी नवंबर की। तो इस तरह के हालात में मैंने देखा कि अब कराची का इज्तिमा बिल्कुल करीब है। तो 3 दिसंबर को, 6 दिसंबर को कराची का इज्तिमा था, 3 दिसंबर को मैंने हज़रत जी को फ़ोन किया कि हज़रत अब कराची का इज्तिमा बिल्कुल ही करीब है और मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं वहाँ पे आ सकूँ, आप दुआ फरमाएं। ये मैंने इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना फ़ोन मिलाया था और दुआ की दरख्वास्त की, सो गया मैं। और अगली सुबह को मैं उठा हूँ, वाकर को हाथ में पकड़ा है और कदम बढ़ा के वहाँ वॉशरूम तक जाने के लिए जाने लगा, तो मुझे लगा कि ताकत है टांगों में, मैं खुद बगैर वाकर के चल सकता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह
वाकर को छोड़ दिया मैंने और ऐसे ही चला गया। शुक्र है
अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और बगैर वाकर के ताकत आ गई थी। और उस दिन फिर मैंने कुछ और भी, मतलब उसके बाद दोपहर में शाम में चलने की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की। फिर 4 और 5 तारीख को रोज़ाना और बढ़ती गई ताकत, 6 तारीख को मैं उधर मरकज़ में पहुँच गया कराची इज्तिमा होने। तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया।
अल्हम्दुलिल्लाह
वहाँ डॉक्टरों ने मतलब तकरीबन 15 लाख रुपए के इंजेक्शन लगवाए सिर्फ, बाकी और अखराजात के अलावा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। अच्छा, उसके बाद दूसरा मेरा मामला कराची इज्तिमा के बाद जो है, कुछ दिनों के बाद मुझे महसूस लगा कि बिल्कुल भूख ख़त्म हो रही है मेरी, बिल्कुल ही भूख लगना बंद हो गई। बल्कि घर में जो खाना पकता था तो मैं कहता था कि ये घर में क्यों पक रहा है खाना, इसकी खुशबू ही जो पकाने की बावर्ची खाने से आती है वो मुझे बिल्कुल ही नागवार होने लगी। तो मैंने मेडिकल डिपार्टमेंट वालों को फिर बता दिया, तो उन्होंने अमराज़ जिगर के पास भेज दिया कि ये आप जो है वो टेस्ट करवाएं कोई जिगर विगर के। तो वहाँ उन्होंने टेस्ट करवाए जिससे पता चला कि आपको हेपाटाइटिस सी हो गया है। अब उनसे मैंने कहा कि ये प्लाज्मा फेरेसिस मेरा पहले हुआ है 1-2 हफ्ते पहले, तो उन्होंने कहा कि वो जो प्लाज्मा डाला गया है आपका उस वो वायरस से मुतासिर शुदा था, इस वजह से आपको हो गया है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि इस मरहले पर आपका इलाज इसलिए हम नहीं करेंगे क्योंकि आप जीबी सिंड्रोम से अभी ताज़ा उठे हैं और अभी रिकवरी फेज़ में हैं, तो ये इलाज चूंकि थोड़ा सा थका देने वाला होता है, कमज़ोर करने वाला होता है, तो आपके उस फायदे को ब्रेक लगा देगा, इसलिए आप 6 महीने रुक जाएं। मुझे 6 महीना तो बड़ा लंबा पीरियड लगा। फिर मैंने हजरत जी से फ़ोन पे रबते की कोशिश की, इतफाक़ की बात है कि नहीं मिल सका नंबर। फिर मैंने नदीम भट्ट साहब का नंबर मिलाया और उनको सूरत हाल बता दी कि अभी एक बीमारी तो ख़त्म हो गई, अब दूसरी बीमारी शुरू हो गई। तो 1-2 दिन बाद नदीम भट्ट साहब ने मुझे फ़ोन पे इतला दी कि उनके हजरत जी से बात हो गई है और उसके लिए एक और दवा भेज रहे हैं आपको। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। कुछ दिन बाद वो दवा भी आ गई और वो मैंने खाना शुरू कर दी, तो अल्लाह के फजल से भूख भी सही लगना शुरू हो गई और हालत बिल्कुल ठीक हो गई।
अल्हम्दुलिल्लाह
अब 6 महीने बाद उस डॉक्टर को दिखाना था, फिर तो वहाँ से मैंने रेफरल लेके उस डॉक्टर के पास गया, उसने फिर टेस्ट कराए और कहा कि आपका तो टेस्ट नॉर्मल है, आपको हेपाटाइटिस सी ख़त्म हो गया है, बगैर दवा के ख़त्म हो गया है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको क्या पता कि मैंने क्या दवा खाई है, आपने तो नहीं दी दवा, 6 महीने इंतज़ार करवाया लेकिन आप कह रहे हैं बगैर दवा के, तो आपको पता नहीं। दिल में कहा मैंने कि आपको क्या पता कि मैंने क्या दवा खाई। फिर उन्हीं दिनों जो है कंपनी ने मुझे कहा कि फिर आप जीबी सिंड्रोम वाले डॉक्टर को भी दोबारा दिखा दें फॉलोअप चेकअप के लिए। तो डॉक्टर फारूक शहाब साहब को भी उन्होंने रेफर कर दिया। वहाँ उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि चल कर दिखाओ। अब मैंने चल कर दिखाया तो वो हैरान बल्कि परेशान हो गया कि आपको लंगड़ाहट क्यों नहीं है। मैंने कहा अल्लाह का करम है, मैं क्यों लंगड़ाऊँ। तो उसने कहा कि आप पर जितना सख्त अटैक हुआ था जीबी सिंड्रोम का, अव्वल तो उसमें 50% लोग सरवाइव कर पाते हैं और जो सरवाइव करते हैं उनमें भी मुस्तकिल जो है वो लंगड़ाहट या इस तरह टांगों की कोई, दोनों टांगों में या एक टांग में मुस्तकिल ऐब आ जाता है।
अल्लाह
मैंने कहा अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस ऐबदार होने से बच गया। तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया।
तो